येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। स्वागत आप सबका। भगवत गीता के सार को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सो 18 अध्यायों की चर्चा 18 सेशंस में। तो अब तक हम लोग 7 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं और आज 8वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। सो आप सब 7वें अध्याय में कल हम लोग देख चुके हैं, 30 श्लोकों में भगवान ने भक्ति का गुणगान किया। अब ये जो 8वां अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण बात को हमें बताता है कि भक्ति जीवन भर तो करें लेकिन जीवन भर किस लिए करें, ताकि मृत्यु के समय अगर हमें भगवान का स्मरण हो जाए तो फिर बड़ी आसानी से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो ये इस 8वें अध्याय में, पूरे अध्याय में भगवान प्राय इस बात का वर्णन करते हैं कि कैसे जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है अर्थात मृत्यु का समय, उसको हम कैसे सामना कर सकते हैं। सो ये इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको हम लोग प्रारंभ करें, इस 8वें अध्याय को। वैसे हम आपको बता चुके हैं और आप सब जानते हैं कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवद गीता के इन अध्यायों पर, तो ये भगवद गीता यथारूप के आधार पर है। यथारूप मतलब जैसे है वैसे ही, जैसे भगवान ने कहा वैसे ही, या कहना चाहिए कि जैसे अर्जुन ने समझा वैसे ही इसको प्रस्तुत किया गया है। कोई बदलाव नहीं है और इसको प्रस्तुत किया है कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और उनकी शिक्षाओं पर आधारित हम ये जो सेशन है इसको कर रहे हैं। अब 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने एक दो शब्द कह दिए, अधिदैव अधिभूत इत्यादि। तो अर्जुन प्रारंभ में ही इस 8वें अध्याय के प्रश्न करता है। 8 प्रश्न किए अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये अधियज्ञ रहता कहाँ है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने किया कृष्ण आपका स्मरण मृत्यु के समय कैसे हो सकता है। तो इस बात को श्री कृष्ण ने अब बताना प्रारंभ किया। तो वो पहले जो सात प्रश्नों का उत्तर है वो बहुत जल्दी दे देते हैं, एक दो श्लोकों में दे दिया उन्होंने। और फिर जो आठवां प्रश्न है कि हे कृष्ण आपको कैसे मृत्यु के समय याद किया जा सकता है, पूरे अध्याय में भगवान उसको बताते हैं। तो ये आठवां अध्याय है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे है पहला विभाग इस अध्याय का, 22 श्लोकों का अध्याय। पहला विभाग है कि जहां कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं, और पहले चार श्लोकों में, दो श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न, दो श्लोकों में भगवान उत्तर दे देते हैं। और फिर जो आठवां प्रश्न है कि कैसे स्मरण करना है, उसको भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो पांचवें से आठ उसको वर्णन करते हैं कि कैसे मृत्यु के समय मेरा स्मरण हो सकता है, मेरा स्मरण होना चाहिए ये बताते हैं। फिर उसका अभ्यास कैसे करना है वो नौवें से तेरहवें तक बताते हैं। फिर चौदहवें श्लोक से लेकर सोलहवें श्लोक तक बताते हैं शुद्ध भक्ति, भक्ति के द्वारा कैसे मुझे स्मरण किया जा सकता है। और फिर अंतिम विभाग में बताते हैं कि कैसे भौतिक और आध्यात्मिक जो जगत हैं, सो उसका गुणगान, उसकी तुलना करते हैं और भगवान के धाम का महत्व समझाते हैं। सो ये आठवां अध्याय है। सो पहला अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर हैं। सो अर्जुन प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्या हम सबको प्रश्न करने चाहिए? कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं, जो कहा जाए चुपचाप स्वीकार करना है। अब अर्जुन जानता है कि जो भी बोला जा रहा है कृष्ण बोल रहे हैं, तो अर्जुन के मन में प्रश्न कहां से आ गए, क्यों प्रश्न कर रहा है अर्जुन, ये संशय क्यों आ रहा है? सातवें अध्याय में हमने देखा भगवान ने ज्ञान दिया असंशयम समग्रम माम, तो फिर अर्जुन के मन में क्यों प्रश्न आ रहे हैं? प्रश्न आना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कैसे प्रश्न आने चाहिए, वो प्रश्न जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें, वो प्रश्न जो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बता सकें, वो प्रश्न जिससे हम ये जान सकें कि ये जो हमारा जीवन है इसका कैसे उपयोग करना है, हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए। हमारे प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए कि कहां पर बम फेंका है, क्या हुआ है, नहीं, हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उपयोगी है, कैसे इसका उपयोग करें, कैसे उस उद्देश्य को प्राप्त करें, ये हमारे प्रश्न होने चाहिए। और उन प्रश्नों के द्वारा, अगर हमारे प्रश्न सही हैं, तो प्रश्नों के द्वारा हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, उनके उत्तर को ग्रहण करके। या कहना चाहिए कि अगर सही दृष्टि में हम प्रश्न पूछते हैं तो हम कृष्ण को समझ सकते हैं। तो हमारे प्रश्न उस लिए होने चाहिए, उस उद्देश्य के लिए होने चाहिए कि आइए कृष्ण को समझें। तो ये अर्जुन का प्रश्न था। सो भगवान ने बताना शुरू किया, अर्जुन का प्रश्न था किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ब्रह्म क्या है? तो भगवान बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, जीव अर्थात हम सब भी ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है। कैसे हैं जीव और भगवान दोनों ब्रह्म, कैसे कहलाते हैं? जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि जीव भी शाश्वत है, जीव पूर्ण ज्ञान में है, आनंद में रहता है, और जो भगवान में गुण है वही गुण है लेकिन मात्रा कम है। जैसे समुद्र विशाल होता है उसकी बूंद में भी वही गुण होते हैं जो विशाल समुद्र में है, नमकीन होता है। इसी तरह जीव ब्रह्म कहलाता है क्योंकि भगवान के समान उसमें गुण हैं, और ब्रह्म परमात्मा भगवान वो तो ब्रह्म कहलाते ही हैं, लेकिन उनको ब्रह्म कहलाने में एक जरा सा बदलाव है। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान पर ब्रह्म कहलाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने एक ही वाक्य सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो लोग इस अहम ब्रह्मास्मि को कभी कभी गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं अहम मैं ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, ये मूर्खता है। अहम ब्रह्मास्मि ये सही है, लेकिन अहम परब्रह्मास्मि ये सही नहीं है। तो इसलिए एक ब्रह्म है और एक परब्रह्म है, जीव है और भगवान है, इसके भेद को प्रकट होना हमें समझना आवश्यक है। और इसको समझने के लिए हमारी चेतना को शुद्ध होना आवश्यक है। हमारी दो प्रकार की चेतना हो सकती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। चेतना मतलब एक विचार करने की शक्ति, या जिससे हमारी इच्छाएं, जिस चीज से हमारी इच्छाएं विचार प्रकट हो सकते हैं, ऐसी एक चेतना, या विचारात्मक शक्ति, मानसिकता, जिसे भी आप कह लें। तो एक वो भौतिक होती है और दूसरी आध्यात्मिक। भौतिक क्या होती है, मतलब भौतिक मतलब जो भगवान से दूर हो, वो क्या होती है, जहां हम भगवान बनना चाहते हैं, हम सब चीजों को नियंत्रण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहे। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो फल आते हैं कर्म बन जाते हैं, हम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। तो जब तक हमारी मानसिकता ये भौतिक रहेगी, भौतिक मतलब मैं कुछ पाना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं सब कार्य मेरे लिए, तब तक ये चेतना भौतिक है। लेकिन आध्यात्मिक क्या है, कार्य मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन किस लिए, ताकि कृष्ण का गुणगान हो सके। इसमें बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, कोई बात नहीं, धन कमाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन किस लिए, भगवान की सेवा कर सकूं। मैं बहुत प्रसिद्ध होना चाहता हूं, किस लिए, भगवान की सेवा कर सकूं। या दूसरे शब्दों में, ये चेतना, ये मानसिकता, ये विचारधारा कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, और भगवान चाहे तो धन देंगे, चाहे तो प्रसिद्धि देंगे, चाहे तो दुख देंगे, चाहे तो सुख देंगे, जो भी वो दे उनकी कृपा है। एक बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी इस आध्यात्मिक मानसिकता विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं, चेतना को प्रकट कर रहे हैं। क्या है वो, तत्तेनुकंपां, हे कृष्ण जो कुछ है आपकी कृपा है, तद अनुकंपा, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण भुंजाने वात्मकृतं विपाकम, सुख है दुख है सब आपकी कृपा है भगवान। और जो व्यक्ति इस चेतना में रहता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस मानसिकता में रहता है कि सब कुछ कृष्ण का है, और जो भी हमें मिल रहा है वो कृष्ण की कृपा है, सुख भी कृष्ण की कृपा है, दुख भी कृष्ण की कृपा है, अगर इस चीज को व्यक्ति समझ जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे वो तो मुक्ति का अधिकारी हो गया, उसको तो मुक्ति मिलेगी ही, बस इतना सोचना है कि जो मुझे मिल रहा है भगवान की कृपा, और इसके द्वारा मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये आध्यात्मिक मानसिकता या आध्यात्मिक चेतना है। और जीव जो तटस्था शक्ति कहलाता है भगवान की, वो कभी आध्यात्मिक चेतना में रह सकता है और कभी भौतिक में, क्योंकि तट पर है, तटस्था मतलब तट पर है, तो कभी कभी वो आध्यात्मिक चेतना में रहता है, कभी भौतिक में। इस जीवन में भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी हमें लगता है भगवान की भक्ति करना सबसे अच्छा है, यही करेंगे जीवन में, फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत आनंद लेना, भोग करना, ये भी जरूरी है। तो हमारा जीवन ये पेंडुलम की तरह है, पेंडुलम इधर से उधर घूमता है ना, पेंडुलम। तो कभी हमें लगता है बस सब कुछ छोड़ना है, फिर कभी नहीं, बहुत आनंद लेना है, फिर छोड़ना है, फिर आनंद लेना है। सो जीव ये तटस्था है, हमें ये समझना है कि हमें किस तरफ जाना जरूरी है। और जब तक हम उस आध्यात्मिक चेतना में नहीं जाते हैं, जहां हम भगवान की सेवा करके अपने मूल स्वरूप को प्राप्त ना करें, तब तक हम इस जगत में रहते हैं। और क्या होता है, शंकराचार्य जी समझाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेना है, बारंबार मृत्यु होनी है, बार बार किसी माँ के गर्भ में जाना है, मतलब 84 लाख योनियों में घूमना है। पद्म पुराण कहता है कि जीव को 84 लाख योनियों में घूमना होता है, अलग अलग 84 लाख प्रकार के उनको जीवन मिलते हैं और 21 आधार पर मिलते हैं। कभी वो बहुत ऊंचे स्वर्ग में चला जाता है, कभी कुछ और करता है, तो किस आधार पर मिलता है, जो भी कार्य वो करता है। और इसीलिए कभी कभी लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं और स्वर्ग जाने के लिए बड़े यज्ञ करते हैं, ताकि बस अब हम, ये बहुत तकलीफ हो गई, बहुत सारे पशु जीवन इत्यादि ले लिया, अब हम स्वर्ग जाएंगे। सो स्वर्ग जाकर भी क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जाना बस वो हो गया, हमारे कोई स्वर्गवासी हो गए, तो उनको लगता है कि ये एकदम ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वर्ग है क्या? जो वैदिक कर्म कांड किए जाते हैं, वैदिक कार्य किए जाते हैं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इस स्वर्ग क्या है और क्या वहां जाना अच्छा है या नहीं, तो आइए आपको समझाते हैं। यहां पर आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले व्यक्ति में श्रद्धा होती है, फेथ। क्या श्रद्धा होती है? कि मैं अगर देवलोकों में चला गया, स्वर्ग लोकों में चला गया, तो बहुत आनंद होगा। तो उस श्रद्धा से वो यज्ञ करता है और यज्ञ इत्यादि कर फिर स्वर्ग के लिए योग्य हो जाता है, स्वर्ग में प्रवेश करता है। यहाँ आप लोग पूरे चित्र में ये जो एरोज लगे हैं उनको आप ठीक से पालन कीजिए, उनके साथ साथ चलिए एरोज के, तब आप समझ जाएंगे क्या होता है। हम तो पूरा बता रहे हैं आपको कि कैसे हम यहाँ से स्वर्ग जाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद, ये शास्त्रों में दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद इस बात को समझाता है। तो शास्त्र, तो श्रद्धा हो गई हमें, श्रद्धा से हमने यज्ञ इत्यादि किए, अब हम स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में पहुंच के क्या करेंगे? वहां पर हम लोग बहुत अच्छा आनंद लेंगे, सोम रस इत्यादि बहुत आनंद ले लिया। और क्या होता है? आप बहुत आनंद ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मजा कर रहे हो, वहां पर बहुत आनंद है। अचानक ऐसा होता है कि आपका समय समाप्त हो गया। समाप्त हो गया मतलब आप जितने पुण्य पृथ्वी से लेकर आए थे वो पुण्य समाप्त हो गए, अब आपको जाना है वापस। अरे आपने तो सोचा ही नहीं था वापस जाना होगा, जब आप आनंद ले रहे थे आपको लगा यही जीवन है, नहीं अब वापस जाना है। तो फिर क्या होता है? वो व्यक्ति फिर बादलों में आता है, बादलों के द्वारा। व्यक्ति मतलब पूरा शरीर नहीं, केवल जीव, आध्यात्मिक जीव जो सूक्ष्म शरीर से बंधा है। तो बादलों से आकर फिर बारिश से होती है, बारिश के बाद फिर पृथ्वी पर आता है, बारिश के द्वारा जीव, जीवात्मा पृथ्वी में आता है और फिर पृथ्वी में प्रवेश करके फिर अन्न में प्रवेश करता है। अन्न के द्वारा पुरुष के शरीर में जाता है, पुरुष के शरीर में फिर वीर्य में जाता है, वीर्य फिर स्त्री के शरीर में जाता है और फिर से जन्म लेता है बालक के रूप में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है? बहुत सरल, सरल भाषा में बहुत मेहनत करके हम स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन होता क्या है, वहां से भी वापस आना पड़ता है और वापस आकर फिर से जन्म लेना पड़ता है, जिसको भगवान बताते हैं, आगे भी बताएंगे कि कैसे हम ऊपर भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो फिर से यहां आना होता है। तो जब तक हम स्वर्ग या ऊंचे लोकों के लिए कामना करेंगे, तब तक हमें बारंबार इस जगत में वापस आना ही पड़ेगा। और ये जगत है कैसा? ये जगत जहां हम लोग रह रहे हैं, ये जो शरीर जिसके लिए हम पीछे पड़े हुए हैं, ये क्या है? ये बार बार बदलता है, ये बारंबार नए चीजें प्रकट करता है, या कहना चाहिए कि हमारे समक्ष बहुत सी बदलाव लाता है, हमेशा बदल रहा। जैसे शरीर है, आप देखिए शरीर भी बदलता है। कैसे? सबसे पहले जन्म होता है, जन्म के बाद थोड़ा बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर बना रहता है, बने रहने के बाद कुछ उससे उत्पन्न होता है, जैसे संतान इत्यादि, उसके बाद फिर क्षीण होने लगता है या वृद्ध होने लगता है और अंततः मर जाता है। सो जन्म थोड़ा बढ़ना, बने रहना, कुछ संतान उत्पत्ति या अन्य चीजें, फिर शरीर का क्षीण होना, बूढ़ा होना और फिर मर जाना। ये जगत है जिसके पीछे हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं। तो उसको भगवान ने अधिभूत कहा है, अधिभूत समझाया। और फिर अधिदैव, अधिदैव मतलब ये विराट रूप भगवान का, ये जो सारा ब्रह्मांड, जिसे बताया गया है कि भगवान के जो पांव होते हैं वो नीचे के जो लोक हैं भगवान के पांव कहलाते हैं, भगवान का सिर ऊंचे ऊंचे लोक कहलाते हैं, आंखें चंद्रमा सूर्य इत्यादि हैं। तो ये एक भगवान का विराट रूप है, लोग इसके प्रति भी आकृष्ट होते हैं। तो इसका भी वर्णन भगवान ने अधिदैव के रूप में किया। और फिर भगवान समझा रहे हैं अधियज्ञ, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था क्या है ये सत्य, भगवान बता रहे परमात्मा। परमात्मा हमारे हृदय में है, हम सबके हृदय में है। और वो क्या करते हैं परमात्मा? उपदृष्टा, हमारी हमारी चीजों को देख रहे हैं, हमारे कार्यों को देख रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। कभी कभी व्यक्ति, आप जानते हैं व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता कोई देख नहीं रहा। लेकिन भगवान यही हृदय में बैठे हमारी सारी चीजों को देख रहे हैं। और अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि भगवान हमें देख रहे हैं, तो क्या आप गलत काम करेंगे? दुनिया से, अगर हमें इस पूरी दुनिया से पाप को समाप्त करना है, तो इस बात को विश्वास दिलाना चाहिए लोगों को कि जो भी आप कर रहे हो देखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके साक्षी हैं, विटनेस हैं, बहुत सारे विटनेस हैं। और सबसे बड़े विटनेस भगवान स्वयं है। और वो परमात्मा हमारे हृदय में हमारे साथ सदैव रहते हैं। और वही अलग अलग रूप से जो जीवात्मा है उसको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं, ठीक है तुम ये काम करो। लेकिन हाँ, भगवान बताते भी ये काम करोगे तो दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी जीव करता है, भगवान कहते करो। तो ये सारी चीजें जो समझ जाता है, कौन समझ जाता है सारी चीजें कि ये कैसे पर भगवान कार्य करते हैं, परम पुरुष भगवान जो हैं वो कैसे प्रकट होते हैं या कैसे हमारे सारे कार्यों को देखते हैं? केवल भगवान का भक्त इस चीज को समझ सकता है। तो ये बताने के बाद ये सब भगवान ने वर्णन कर दिया। अब भगवान पूरे अध्याय में एक ही चीज को बताने वाले हैं, कैसे मेरा स्मरण किया जा सकता है मृत्यु के समय। ये अब पूरे अध्याय का विषय है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बताते हैं कि जिस तरह का स्मरण, जो चीज आप याद रखोगे मरने के समय, उसी प्रकार का शरीर मिलने वाला है आपको, वो आपका भविष्य बना रहा है। तो अर्जुन के इस आठवें प्रश्न के उत्तर में भगवान अब ये पूरे अध्याय पे चर्चा करते हैं और प्रारंभ करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान बताते हैं कि अंत काले च मामेव, हे अर्जुन, अंत काल में मृत्यु के समय, बस मरने वाला है व्यक्ति, अगर उस समय माम एव केवल मेरा, माम एव मतलब केवल मेरा स्मरण अगर वो करता है, और ऐसा स्मरण करते हुए स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर मतलब अपना ये शरीर, इसको त्याग देता है अगर अंत काल में, तो क्या होता है? यह प्रयाति समद्भावम, व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, नास्ति यत्र संशयः, कोई संशय नहीं है। भगवान गारंटी दे रहे हैं, भगवान ने सारे संशय दूर कर दिए। तुम्हें क्या करना है? केवल बस अंत समय में मेरा स्मरण करना है, मेरे पास आओगे, जीवन सफल। लेकिन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ये इतना सरल है? अंतकाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, प्रयाण काले बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हमने जो जीवन भर किया है, जीवन में जो जो कार्य किए हैं उसकी परीक्षा होगी। मृत्यु दरअसल अंतिम परीक्षा है हमारे लिए, फाइनल एग्जाम। तो क्या होगा? जो भी जीवन में किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, सब टेस्ट होगा उस समय। तो इसलिए जो प्रयाण काले अंत काल का समय है बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन दरअसल चिंता में है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये कृष्ण आपने कह दिया, लेकिन एक भक्त का मृत्यु के समय क्या होता है, क्या स्थिति होती है? जो भगवान का आपका भक्त है, कृष्ण का भक्त है, उसकी मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है? तो इसको अर्जुन समझना चाहता है। वैसे मृत्यु ये एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण है जहां हम केवल जरा सा प्रयास करके अपने जीवन को तुरंत सफल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जीवन भर, आपने पूरे एक साल भर किसी तरह पढ़ाई नहीं कर पाए, प्रयास किया, लेकिन अंत में बस एग्जाम देने गए और आपने बहुत अच्छा मार्क्स कर दिया, आपने बहुत अच्छा पेपर लिख दिया, तो आप पास हो जाते हो, सही है ना? साल भर पढ़ो या ना पढ़ो, पूरा अच्छा पेपर कर दिया, आप पास हो जाते हो। तो मृत्यु वो समय है कि जहां अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो हम पास हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत होती कैसे है? वो थोड़ी सी मेहनत करने के लिए जीवन भर प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है। और उस समय स्मरण हो जाए तो सफलता है। राजा कुलशेखर जो दक्षिण भारत में आलवारों में से एक हैं, तो राजा कुलशेखर कहते हैं, बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना है, वो कहते हैं कि मेरे जो मन का हंस है वो बस आपके चरण कमलों में आश्रय चाहता है। जैसे जो हंस होता है वो बहुत आनंद लेता है, जो कमल होते हैं, सो कमल की जो नीचे ऐसे डंडी होती है कमल की, तो उसमें बहुत आनंद लेता है। तो राजा कुलशेखर कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निबधौ स्मरणं कुतस्ते। कि वो कहते हैं कि हे कृष्ण, उनकी प्रार्थना है, हे कृष्ण इस समय मेरा मन आप में लगा हुआ है। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे मिशतु मानस राजहंस, इस समय मेरा मन लगा है, बस इसी समय मेरा मन लगा रहे और मेरे प्राण निकल जाए, क्या पता बाद में जब प्राण निकल रहे हों तो उस समय कफ वात पित्ते, ये कफ से वात पित्त से पूरा गला भर जाएगा, आपका स्मरण नहीं होगा। दूसरे शब्दों में राजा कुलशेखर हमें समझा रहे हैं कि हमें हर समय कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर स्थिति के लिए, क्योंकि जो भी मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर लेता है वो कृष्ण के धाम को निश्चित प्राप्त करता है, जो सर्वोच्च जगह है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। इस जगत में आप देख सोच सकते हैं, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से अच्छा वो है, वहां से अच्छा वो है, यहाँ से अच्छा वो है, फिर इस पृथ्वी से अच्छा स्वर्ग है, स्वर्ग से अच्छा ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से ऊपर वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ में भी सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण लोक, भगवान का धाम, वो लोक वृंदावन, और उसको वो प्राप्त करता है। उसके लिए स्मरण बहुत आवश्यक है, लेकिन कौन कर सकता है स्मरण? जिसने जीवन शुद्ध जिया है। अशुद्ध जीवात्मा के लिए, अशुद्ध व्यक्ति के लिए, पापी व्यक्ति के लिए कृष्ण का स्मरण करना असंभव है। इसलिए हमने कहा वो थोड़ी सी मेहनत मृत्यु के समय कर लें, लेकिन कौन कर पाता है? जिसने शुद्ध जीवन जिया। अशुद्ध जीवन, पापी जीवन, पापी व्यक्तियों के लिए तो कृष्ण का स्मरण हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या पापियों के लिए कोई अवसर नहीं है, क्या करें जिन्होंने पाप कर लिया है? क्या भगवान इतने क्रूर हैं कि अगर हमसे पाप हो गया तो फिर हमारे लिए कोई अवसर नहीं? नहीं, बिल्कुल अवसर है। हम भगवान का स्मरण करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सो अगर शुद्ध नहीं है तो फिर हमारे लिए भगवान का स्मरण करना अंतकाल में संभव नहीं है। तो फिर कैसे शुद्ध करें? भगवान के स्मरण के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। और अगर ये अभ्यास आपने नहीं किया तो जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण होना बहुत कठिन है, या कहना चाहिए असंभव है। ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने सोचा कि हम मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेंगे, अभी क्यों करें? सब मृत्यु के समय करेंगे, होता है मृत्यु के समय। जो चीज आपने जीवन भर की है वही होगी मृत्यु के समय। एक बार एक व्यक्ति, उसके तीन लड़के थे, सो उसने तीनों लड़कों को घर के बाहर ही दुकान करके दे दी। बहुत ज्यादा हमेशा उसको पैसा, दुकान, उसी में चिंता रहती थी। तो एक समय एक साधु आए, उन्होंने कहा कि देखो अब तो आपने अपने बच्चों को भी सब कर दिया, सब ठीक हो गया, अब भगवान का स्मरण करो। उसने कहा बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अरे थोड़ा सा समय निकालो। बिल्कुल नहीं, अभी तो पैसा कमाना, अभी तो देखना है सबको, ये सेटल करना है। तो क्या है, बहुत समझाया तो साधु से उसने पूछा क्या लाभ है? उन्होंने कहा अगर मृत्यु के समय आपने भगवान का स्मरण किया कृष्ण का, तो आप भगवान के धाम जाओगे। तो उसने कहा देखो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे से तो सीधी सीधी बिजनेस की बात करो, अंत समय में करना है ना, तो मैं जीवन भर क्यों खराब करूं, अंत समय में कर लूंगा स्मरण। साधु बोलकर चले गए। खैर उसने किया नहीं, और फिर अंत समय आया उसका। तो बेड पर लेटा था, उसको लगा कि अब मेरा अंत समय आ गया, मरने वाला हूं। तो वो जोर से चिल्ला, उसको याद आया कि मुझे साधु ने कहा था कि भगवान का स्मरण करना। वो बहुत जोर से चिल्लाया, दर्द हुआ उसको। तो जैसे ही चिल्लाया, जो लड़के थे वो अपनी अपनी दुकान छोड़कर भाग कर आए कि लगता रे पिताजी को कुछ हो गया, जाने वाले हैं, क्या है। वो भाग कर आ गए। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अंतिम समय है इसका। लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर, बस जाने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं। और उसने देखा कि तीनों लड़के आकर खड़े हैं मेरे सामने। तो जोर से उनको कहने लगा, मूर्खों, क्या यही यही दिन देखने के लिए मैंने तुम लोगों को ये दुकान दी थी? तुम दुकान छोड़कर आ गए हो, वहां पर कोई चोर आ जाएगा तो क्या होगा? तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, पैसा संभालना नहीं आता। बस बोलते 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 प्राण निकल गए। सो जो चीज जीवन भर की है वही चीज अंत में स्मरण आएगी, कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा। बहुत सरल इसका अर्थ है, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए, अपने जीवन को एक तैयारी बनाइए अंतिम परीक्षा की। हमें आवश्यक नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग सीखना, हमें आवश्यक है आर्ट ऑफ डाइंग सीखना, कैसे हम मरें मृत्यु, क्योंकि वो हमारी परीक्षा है, अंतिम परीक्षा, और उसके लिए कैसे हम जिएं, उसकी तैयारी करें। तो हमें तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है हमें? हमें तैयारी करनी है कि कैसे मरना है, उस समय पर भगवान का स्मरण हो जाए, और उसके लिए शुद्ध जीवन जीना है। क्या रखा है पाप के जीवन में, क्या मिलने वाला है पाप के जीवन से? तो इसीलिए ऐसी चीज को लेने का प्रयास कीजिए जो हमें कई कई जन्मों में नहीं मिली है। इसलिए ये सोचना कि केवल मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लेंगे जीवन भर नहीं होगा, नहीं। भगवान का स्मरण कीजिए हर क्षण, अभ्यास कीजिए, ये अभ्यास है। देखिए हमारी संस्था में हर स्थिति में लोग अभ्यास करते हैं, फोन उठाते हैं हरे कृष्णा कहते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं हरे कृष्णा कहते हैं। तो कहते कहते उनको इतना अभ्यास हो जाता है कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है, मानो आप गाड़ी में जा रहे हो, अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो उनके मुंह से निकलता हरे कृष्णा। ये अभ्यास है, तो इस अभ्यास को करना चाहिए हमें, हर स्थिति में भगवान का नाम लेते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे अपने जीवन को ढालें, अभी हमने बताया कि जीवन ऐसा होना चाहिए तो कैसे होगा, जैसे हमने बताया कि अगर उसको आप अभ्यास कीजिए तो कैसे अभ्यास करें, सबसे पहला सत्वगुणी जीवन जीने का प्रयास कीजिए। सत्वगुणी जीवन मतलब जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप के जीवन की ओर, गलत जीवन की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ता, सादा जीवन, उतने जितना भगवान की कृपा से जो मिला उसमें संतुष्ट, तो ऐसा जीवन जीने का पहला प्रयास कीजिए। पहली चीज आपको करनी है सत्वगुण में रहने का प्रयास कीजिए, और फिर सतत हर समय भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। एक तो सादा जीवन हो गया या सत्वगुण का जीवन, मतलब हमारा भोजन, हमारा रहन सहन, हमारा बोलना, ये सब सत्वगुण में हो, और फिर उसके साथ साथ सतत भगवान के नाम का उच्चारण, जैसे अभी हम लोगों ने किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सतत चलना चाहिए, छोड़िए नहीं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं जो बोल नहीं सकते तो मन में कीजिए। तो कोई कह सकता है दो दो काम कैसे हो सकते हैं, मन में हम भगवान के नाम का जप करें और अपने ऑफिस का काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम ऑफिस का काम करते हैं, जब हम कॉलेज का काम करते हैं, तो हम कैसे स्मरण कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, एक पिता है तो वो सुबह उसको ऑफिस जाना जरूरी है, रात को उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, लेकिन उसको बहुत जरूरी है ऑफिस जाना, तो वो सुबह ऑफिस जाता है, अपनी पत्नी को बोलकर जाता है कि देखो बच्चे का ध्यान रखना, उसको दवाई देते रहना, डॉक्टर के पास ले जाना, मुझे बताते रहना क्या हुआ। तो अब वो ऑफिस चला गया, ऑफिस जाते हुए भी उसके मन में यही है, अरे बच्चे का बुखार बढ़ तो नहीं गया, वो ठीक है ना, ये सब सोचते हुए वो जा रहा है। ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस में सब काम कर रहा है अपना, लेकिन उसका चिंतन है दवाई ली होगी कि नहीं, डॉक्टर मिला कि नहीं, तो फिर बारंबार पूछता रहता है, लेकिन साथ साथ अपना काम भी कर रहा है। तो अगर हम अपना काम करते हुए अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर हम अपना सारा काम करते हुए परमपिता भगवान के बारे में क्यों नहीं सोच सकते, वो भी हमें सोचना चाहिए। तो इसीलिए सबसे आसान और सरल तरीका है कि जब हो सके तो हम जोर से कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जब ना संभव हो, हम अन्य कार्यों में हों, तो मन में, तो सतत चलना चाहिए। और साथ साथ जब ये होगा तो हो सकता है जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, बाधाएं आए, कुछ लोग, कुछ हम करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए, और ऐसा होता है कभी कभी, को करना चाहता है भगवान का नाम नहीं, कोई आ गया चलो छोड़ दो, क्रिकेट मैच आ गया अरे छोड़ दो, या फिर हम कहीं जा रहे हैं 15 दिन छोड़ दो, तो ये सारे बहुत से कष्ट आते हैं। फिर कभी कभी लोग विरोध करते हैं, लोग आकर आपको कहेंगे ए अभी क्या बाबा जी बन रहा है, ये क्या सन्यासी बन रहा है, पंडित जी बन रहा है, बंद करो ये सब, ये बुढ़ापे के लिए है। तो ये सारी चीजों को सहन करते हुए भगवान की सेवा में समर्पित जीवन जीना चाहिए, कृष्ण की सेवा में समर्पित जीवन जीना चाहिए, ताकि हम सतत कृष्ण का स्मरण करें। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मृत्यु के समय क्या होगा देख लीजिए आप। हमारी जो मानसिकता उस समय पर है वो हमारा अगला गति निश्चित करेगी। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेयस्सदा तद्भाव भावितः। जो चेतना आपकी है, जो मन है आपका, जो मानसिकता है, वो आपका अगला शरीर बना रही है। उदाहरण देते हैं आपको, मान लीजिए कि आप मृत्यु के समय कोई लड़का केवल लड़की के बारे में सोच रहा है, मर रहा है लेकिन सोच रहा है हाय ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अगला जन्म उसको लड़की का मिलेगा। जो चेतना आपकी बन गई, देखिए बड़ा संभालना चाहिए हमें, सरल नहीं है, तो ये हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपना स्वभाव को बदलना है, खास करके मृत्यु के समय, जो हमने हो सकता है जीवन में नहीं किया लेकिन मृत्यु के समय तो कैसे कर सकते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है। तो अगर इस तरह से हम जीवन बिताते रहेंगे, कृष्ण की सेवा में अपने को रत रखेंगे, तो हमारे लिए निश्चित भगवान ने कह दिया है कि हमें अगला जीवन आध्यात्मिक मिलेगा, भगवान के साथ मिलेगा, ये बारंबार कष्ट वाला जीवन नहीं मिलेगा। ये हमें जानना चाहिए। सो क्या ये पक्का है कि अगर हम कृष्ण के विषय में सोचते हैं मृत्यु के समय तो हमें कृष्ण मिलेंगे? ये गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। आप अगर अभ्यास करते हो कृष्ण का स्मरण का जीवन भर, केवल मृत्यु के समय नहीं जीवन भर, तो फिर निश्चित है कि आपको कृष्ण प्राप्त होंगे। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवतम में है, भरत महाराज का, जो सारी पृथ्वी के राजा थे एक हिरण से आसक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया भरत महाराज ने, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा राज्य, पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ दिया उन्होंने, सुंदर पत्नी बच्चे ऐश्वर्य, और वो सब छोड़कर वो भगवान की तपस्या के लिए चले गए। तपस्या की उन्होंने, बहुत तपस्या की, लेकिन करते करते एक हिरण से आसक्त हो गए। हिरण का छोटा सा बच्चा आ गया वहां पर, और भरत महाराज सोच रहे मुझे उसकी रक्षा करनी है। धीरे धीरे वो देखते रहते कहाँ है हिरण, कहाँ है डियर, डियर डियर होता है ना हिरण, तो ढूंढ रहे हैं उसको। और ऐसा हो गया कि अंत समय में भी, क्योंकि एक दिन वो कहीं चला गया जंगल में, हिरण है भाग गया कहीं, तो भरत महाराज एकदम दुखी हो गए कि अरे ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अब हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हैं भरत महाराज कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ चला गया होगा, कहीं उसको कोई शेर ने खा लिया होगा या फिर क्या हुआ पता नहीं। तो भरत महाराज उसके बारे में सोचते सोचते उनकी मृत्यु हुई, और इसीलिए अगला शरीर उन्हें हिरण का मिला। देखिए, भरत महाराज के लिए केवल एक डियर था। हमारे जीवन में बहुत सारे डियर हैं, इसीलिए हमें संभालना चाहिए। उनका एक डियर था, अगला जीवन हिरण का हो गया। हमारे जीवन में कितने डियर हैं, कितने हिरण हैं, हिरण नहीं कितने डियर हैं, बहुत सारे डियर हैं। डियर सन, डियर फादर, डियर मदर, डियर वाइफ, डियर चिल्ड्रन, बहुत सारे डियर 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 है, और लेकिन एक डियर जो होना चाहिए वो नहीं है, डियर कृष्णा। सो जीवन में हमें सारे डियर्स के ऊपर एक डियर को महत्व देना है, एक को डियर बनाना है, और वो है कृष्णा। सो अगर ऐसे करेंगे तो जैसे भरत महाराज के एग्जाम्पल से हमने सीखा, उदाहरण से, कि उनको हिरण का शरीर मिला है, तो फिर हमें कृष्ण के समान शरीर क्यों नहीं मिलेगा, अगर हम कृष्ण का ही चिंतन करेंगे। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं सतत मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा स्मरण करो। तो हमें मन से, शरीर से, बुद्धि से भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? मन से हमें हमेशा कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए, कृष्ण के सुंदर रूप को सोचना चाहिए, और जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। जैसे आप में से जो लोग मेडिटेशन सेशन में सुबह आते हैं ठीक 6:30 बजे, तो हम लोग कृष्ण के सुंदर रूप को देखते हुए नाम लेते हैं, उस पर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। तो मन को भगवान कह रहे हैं अगर लगाना है भक्ति में या भगवान के स्मरण में हमें मन लगाना है, तो हमेशा उनके रूप को देखना, ध्यान करना। अच्छा, शरीर को लगाना है अगर भगवान के स्मरण में, तो क्या करना है? सदैव जो अपने कर्तव्य हैं वो हम करते रहें, लेकिन उनको समर्पण करके। जैसे अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन युद्ध मत छोड़ो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो, लेकिन उसको मुझे समर्पित कर दो। सो हम सारे अपने कर्तव्य करें, लेकिन भगवान को समर्पण करके। तो ये पहला है मन, और दूसरा है शरीर, और तीसरा है बुद्धि। आप बुद्धि को कैसे भगवान में लगा सकते हो, कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हो बुद्धि के द्वारा? भगवान कहते हैं मई अर्पिता मनो बुद्धि, अपनी मन और अपनी बुद्धि मुझे अर्पण कर दो, मुझ में लगाओ। तो हम बुद्धि से ये सोचें कि कैसे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम ये नाम अन्यों को दे सकते हैं, हमें मिला है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हम अपनी बुद्धि लगाएं कि अन्य लोग भी इसको ले लें, तो बुद्धि से भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर इसका फल क्या होगा? अगर हमने मन, शरीर और बुद्धि तीनों भगवान के स्मरण में लगाई, तो इसका फल ये होगा कि जो हम अभी इसमें फंसे हुए हैं भौतिक कलमश में, तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये करोगे, मन, शरीर और बुद्धि मुझ में लगाओगे, तो गारंटी है कि आप मेरे पास आओगे। जितना ये भौतिक दूषण है चला जाए, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये दुख, ये सब चीज बीमारी, ये सब किस लिए है? क्योंकि हम भौतिक चेतना में हैं, इसको हमें बदलना है। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बन जाता है। ये एक उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है कि जब एक कैटरपिलर होता है तो वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। किसके बारे में? वो तितली के बारे में। और धीरे 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 ककून उसका बन जाता है, और धीरे धीरे इतना तेज उसका स्मरण होता है कि वो बदल जाता है। किसमें? तितली में, बटरफ्लाई में। सो जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में बदल सकता है केवल चिंतन के द्वारा, केवल सोचने के द्वारा, तो अगर हम अपने मन को फोर्स करें, फोर्स करना पड़ेगा क्योंकि मन बहुत सारी चीजों को सोचने के लिए तैयार है, कृष्ण के बारे में नहीं। तो अगर हम मन को कृष्ण के बारे में फोर्स करें, सोचें, तो क्या हम कृष्ण के लोक में नहीं जा सकते हैं? क्या हम कृष्ण के समान, उनके समान जो शाश्वत शरीर है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब इस जगत में होता है तो वहां क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए हमें इस चीज को समझना और कैसा स्मरण होना चाहिए, जानना चाहिए कि कृष्ण ये सच्चे भोक्ता हैं। जैसे हम लोग पांचवें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और एक बात कभी मत भूलिए कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनका भी एक रूप है, और भगवान के रूप पर हमें स्मरण करना चाहिए, जिसे योगा कहते हैं। योगा मतलब भगवान के स्मरण के द्वारा उनसे जुड़ना, उसे योग कहा गया है। तो हमें ऐसा योग करना चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उनके नामों का उच्चारण करके अपना मन उनके ऊपर, उनके रूप पर लगाना। तो ये इस अध्याय में भगवान बड़ा महत्वपूर्ण चीज समझा रहे हैं। और आगे भगवान अपना स्मरण करने का अभ्यास करने की और चीजें बताते हैं। भगवान 10 तरीके बता रहे हैं कि किस तरह मेरे बारे में सोचो। कविम पुराणम मनुषासितारम, भगवान कहते हैं कि कैसे सोचना है, 10 तरीके बता दिए भगवान ने। पहला कवि, कवि मतलब दक्ष है हर चीज में। ओल्डेस्ट पुराणम, भगवान सबसे पहले हैं, उनसे पहले कोई नहीं है, इसीलिए पुराणम, कविम पुराणम। अनुशासितारम, तो वो क्या है? वो नियंता है। देखिए हम सब ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान ये पूरे सब चीजों को कंट्रोल करने वाले हैं। हमको कंट्रोल करते हैं, ये सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, सूर्य को कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं, सारे देवताओं को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए अनुशासितारम, वो कंट्रोल कर रहे हैं हम सबको, हम नहीं कर पाते। हम तो अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बीमारी आती है हम रोक नहीं पाते, लेकिन भगवान सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और अनो रणी, हम बहुत छोटे हैं, वो छोटों में सबसे छोटे हो जाते हैं, सूक्ष्म में सबसे सूक्ष्म। लेकिन ये याद रखिए कि वो होते हुए भी पालन करता है, हम सबका पालन कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत के परे हैं, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमेशा एक व्यक्ति है। उस रूप में उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और एकदम प्रकाशमान है सूर्य के समान और दिव्य है। तो इस तरह से भगवान सॉरी अपने बारे में अपना स्मरण करने के लिए कहते हैं, और फिर वो योगियों के लिए अभ्यास देते हैं। क्या यह अभ्यास है? भक्त्या युक्तो योग बलेना। भगवान एक सुझाव दे रहे हैं कि अभ्यास करो किस चीज का? योगा का, अपने जीवन में। लेकिन कैसे? दिव्य योग। ये कोई योग नहीं कि केवल अच्छे हेल्थ रखने के लिए योगा कर रहे हैं, केवल कुछ आसन करके योगा हो गया, नहीं, दिव्य दिव्य योग होना चाहिए। तो अपना मन भक्ति के माध्यम से हमें लगाना चाहिए। तो मृत्यु के समय भक्ति में हमें अपना मन लगाना चाहिए। और ये कब होगा? योग बलेना, जब हम योग का अभ्यास करेंगे। कोई बिना योग अभ्यास के भगवान के स्मरण को नहीं कर सकता मृत्यु के समय। तो इसीलिए ये जान लीजिए, जब हम ये कहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा, ओल्ड एज आएगी, तब हम भक्ति का पालन करेंगे, ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मूर्खो अगर ऐसा करोगे। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा आप मेरा स्मरण नहीं कर सकते, इसीलिए अभी से अभ्यास करो। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि अगर नहीं करोगे मुझे मेरे रूप पर, अगर आप स्मरण नहीं करोगे तो निराकार ब्रह्म में जाओगे। तो निराकार ब्रह्म क्या है? कौन जाते हैं वहां पर? जो वेदों में पढ़े लिखे हैं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, भगवान बता रहे हैं, और बहुत बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये सब है। लेकिन वो केवल भगवान के ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। ब्रह्म ज्योति से बड़े परे भगवान का धाम है जहां सेवा होती है, और उसका वर्णन हम भगवान कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति, कैसे भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है। क्यों? बहुत सरल है और बड़ा प्रभावी है। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है लेकिन बड़ा प्रभावी है। कैसे? भगवान को प्रेम से स्मरण करना, जिसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग का अर्थ है भगवान को प्रेम से स्मरण करना। तो जो भगवान को सतत स्मरण करता है, भगवान कह रहे जो मुझे सतत स्मरण करता है, कृष्ण को सतत स्मरण करता है, उसके लिए बहुत सरलता से वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना है? दो चीजें, सतत स्मरण और उनकी सेवा। तो भगवान बड़ी सरलता से हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं। और ऐसे लोगों की अंतिम गति क्या होगी? जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उनका वर्णन भगवान कर रहे हैं कि क्या गति होगी। कृष्ण उन्हें बुद्धि देंगे कैसे मुझ तक आना है, क्योंकि हम उनके भक्त हैं तो वो बुद्धि देंगे। और उसके लिए योग्यता भी तो चाहिए होगी। तो एक ही योग्यता है, बड़ी तीव्र इच्छा भगवान के ओर जाने की। बस इस इच्छा को आप कीजिए, तीव्र इच्छा है भगवान बुद्धि देंगे और हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे, और उस समय कोई भी चीज बाधा नहीं बनेगी, बड़ी सरलता से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो भगवान से भक्ति में जुड़ते हैं, और अन्य लोगों में क्या अंतर है? जो ज्ञानी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, कहीं ना कहीं कोई इच्छा बनी रहती है, कोई भोग की इच्छा होती है या ये कष्टों से दूर जाने की इच्छा होती है। लेकिन भक्त के, जो भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, या कहना चाहिए भक्ति योगी है, उसके अंदर क्या इच्छा होती है? केवल कृष्ण को आनंद देने की इच्छा। ये भगवान समझा रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सततम, सतत कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और जो भक्त होते हैं वो भगवान का स्मरण सतत करते हैं, हर समय हर क्षण कृष्ण पर ध्यान करते हैं, और इसके द्वारा कृष्ण का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये जो भक्ति योगा है, ये किस तरह किया जाता है? पांच तरह से किया जाता है भक्ति योगा। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत मतलब भगवान की सेवा की जाती है लेकिन बहुत एक्टिव नहीं। जैसे पेड़ पौधे भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को फल प्रदान करते हैं, तो वो भी सेवा है शांत रस। और फिर दास के रूप में भगवान के दास बनना, भगवान के मित्र बनना। आप भगवान की सेवा करना चाहते हो, भक्ति योग करना चाहते हो, तो ये नहीं है कि बस बहुत खड़े हो गए, बस बहुत तपस्या कर ले। नहीं, भगवान के मित्र बन सकते हो, भगवान के माता पिता बन सकते हो, और भगवान के प्रेमी बन सकते हो। ये पांच तरह से हम भक्ति योग का पालन कर सकते हैं, जिससे भगवान की कृपा हम लोगों को मिलती है और हम उससे भगवान के शुद्ध भक्त बनकर जीवन को सफल कर सकते हैं। सो ये शुद्ध भक्ति है या जो भक्ति योगी होते हैं तो इनको क्या फल मिलता है भक्ति करने का, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि हम सब लाभ ढूंढते हैं। तो आइए आपको लाभ बताते हैं, भक्ति योगी बनने का क्या लाभ है, भक्ति योगी बनने का क्या लाभ है, सीधे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं जो जो सारे ब्रह्मांडों का सर्वश्रेष्ठ गति है, तो हम सीधे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी पतन नहीं होता, एक बार भगवान के धाम में प्रवेश कर गए वहां से कभी पतन नहीं होता, फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो अब आखिरी विभाग में भगवान भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का तुलना करते हैं। तो भौतिक जगत क्या है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, भौतिक जगत मतलब कोई दूसरी जगह नहीं, ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं क्या है, दुखों से भरी हुई है और टेम्परेरी है, हमेशा नहीं बना रहता। और इस जगत में हम देखते हैं कुछ भी हमेशा नहीं रहता, आज है कल नहीं है। और यहाँ क्या होता है, बारंबार ये जगत बनता है और बारंबार इसका नाश होता है। नाश कब हो जाता है इसका, बहुत लंबा समय है लेकिन नाश होता है। जैसे अगर कोई कह सकता है इतने सारे होते हैं समय, हाँ होता है, सतयुग में 17,28,000 साल होते हैं, त्रेता में 12,96,000 होते हैं, द्वापर में 8,64,000 साल होते हैं और कलयुग में 4,32,000 साल। ये सब मिलकर केवल एक चतुर्युग बनता है और ऐसे 1,000 चतुर्युग होने से एक कल्प बनता है। ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा है, आइए ब्रह्मा जी के जीवन को देखते हैं जब हम लोग भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। सो ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, ब्रह्मा जी का जीवन अगर कैलकुलेट करें तो 300,000,000,040,000,000,000 ईयर्स ब्रह्मा जी का जीवन है। बहुत लंबा जीवन है लेकिन भगवान के धाम के अनुसार, शाश्वतता के अनुसार कुछ भी नहीं। तो इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग ब्रह्मलोक भी जाने का प्रयास ना करें। हालांकि ब्रह्मलोक है इसी जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो कौन जाते हैं वहां पर, जो सन्यासी बड़े अच्छे सन्यासी होते हैं वो ब्रह्मलोक जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का क्या होता है, ब्रह्मा जी अगर भगवान की सेवा करते हैं तो फिर उनको मुक्ति मिलती है। तो ये सब वर्णन भगवान ने इस जगत के विषय में किया और बताया कि बारंबार प्रलय होता है इस जगत में, तीन प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया। मृत्यु के समय क्या होता है, एक प्रलय हो जाता है क्योंकि हम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब एक प्रलय होता है और ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने पर एक प्रलय होता है। मतलब ये जगत में बारंबार हमें समापन, फिर शुरुआत, फिर समापन करना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, अपने मनुष्य जीवन को भक्ति में लगाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसके द्वारा फिर कभी जन्म नहीं देता। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। और फिर भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत क्या है, जहां हमें जाना चाहिए, आइए थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम लोग सुन लें कि आध्यात्मिक जगत है क्या। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत का कभी नाश नहीं होता या कभी उससे कोई उसका पतन नहीं होता और वहां असीमित आनंद है, वो भरा हुआ है वो जगत असीमित आनंद से। और वहां कल्प वृक्ष है, आपकी सारी इच्छा, आप इच्छा करो इच्छा पूरी हो जाएगी, बहुत आकर्षक वो जगत है। हाँ हम इस आंखों से उनको देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो दिव्य है, लेकिन वो परम धाम है और ऐसा धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, ऐसा धाम है जहां से वापस नहीं आया जाता। तो कैसे उस धाम को प्राप्त करना है, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि भगवान उस धाम में है, वो सर्वत्र भी हैं और सब कुछ उनके अंदर है। तो हमें उस धाम को प्राप्त करना है, स्थान को, तो कैसे किया जाएगा? केवल भक्ति के द्वारा। भगवान केवल भक्ति से पाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। तो ये जो अध्याय है आठवां, हमें अनन्य भक्ति की ओर ले जा रहा है, भगवान के शुद्ध भक्ति की ओर। जो आखिरी भाग है 28 श्लोकों का, 23 से 28 हम लोग जो चर्चा करेंगे आखिरी विभाग, तो भगवान ने तुलना कर दी कि आध्यात्मिक जगत महत्वपूर्ण है और अब आध्यात्मिक जगत का वो वर्णन करने के बाद ये कहते हैं कि भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त करो, कृष्ण को, मुझे प्राप्त करो। सो जो भक्त होता है वो चिंता नहीं करता किस समय उसकी मृत्यु होगी, वो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। भक्ति में वो स्थिर है, उसको कुछ चिंता नहीं, कृष्ण उसका ध्यान रखेंगे। ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो जो अलग अलग मृत्यु होती है अलग अलग व्यक्तियों की, कहाँ जाते हैं? जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। जो कर्मकांडी हैं वो भगवान, जो इस जगत में ब्रह्म भगवान ने स्वर्ग इत्यादि बनाए हुए हैं वहां जाते हैं और फिर से जगत में आते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं? वो कृष्ण लोक को जाते हैं। तो इसीलिए क्या हम अपना जाने का समय, जाने का मार्ग चुन सकते हैं? तो जो दक्ष योगी होते हैं वो चुन लेते हैं कि कैसे जाना है, लेकिन जो दक्ष नहीं होते हैं वो चुन नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनको ये सब की चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो केवल कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं और इसी प्रकार कृष्ण को प्राप्त करते हैं। सो इसीलिए जो ज्ञान हमें भक्ति का चाहिए वो यहाँ पर मिलता है। वैदिक सभ्यता समझाती है कि व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, फिर गृहस्थ बनना चाहिए, फिर वानप्रस्थ होना चाहिए, फिर संन्यास होना चाहिए और तब जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति की सुंदरता ये है कि आप अभी इसी समय इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति करके जो ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है, जो गृहस्थ, जो वानप्रस्थ, जो संन्यासियों को प्राप्त होता है, जीवन का परम उद्देश्य अपने 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 स्थान में रहकर भगवान की भक्ति करते हुए, वो केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बड़ी सरलता से प्राप्त होता है। तो इस अध्याय के अंत में, इस आज के सेशन के अंत में इसको सार के रूप में कहें तो अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे थे। हमने शुरुआत में बताया कि अध्यात्म क्या है, किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम। तो भगवान ने बताया ब्रह्म क्या है, जीव, अध्यात्म क्या है, स्वभाव, शाश्वत स्वभाव, कर्म क्या है, वो कार्य जिसके द्वारा हमें भौतिक शरीर मिलता है, अधिभूत क्या है, ये भौतिक जगत जो बदलता रहता है, अधिदैव क्या है, भगवान का विराट रूप, अधियज्ञ क्या है, परमात्मा, कहाँ रहते हैं परमात्मा, सबके हृदय में, और आखिरी प्रश्न, कैसे आपको मृत्यु के समय जाना जा सकता है? भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो धन्यवाद आप सबका। किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में? अभिषेक कुमार,
हरे कृष्णा प्रभु जी, सुंदर प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अर्जुन जो थे कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त थे, तो उनके जब डेथ के समय वो स्वर्ग क्यों गए, वो धाम डायरेक्ट क्यों नहीं गए?
अर्जुन भगवान के भक्त थे और वो स्वर्ग क्यों गए?
हाँ, धाम क्यों नहीं गए सब भाइयों के साथ में, मतलब
साथ। आप मृत्यु के बाद पूछ रहे हो या पहले?
मृत्यु के बाद।
महाभारत में ये वर्णन है कि जब पांचों भाइयों की मृत्यु हुई तो एक एक कर वो गिरते रहे, और फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए, वहां पर उन्होंने एक उनकी परीक्षा हुई और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके सब भाई बहन, ये महाभारत वहां रुक जाता है। लेकिन भागवतम वर्णन करता है कि ये तो केवल एक मार्ग था, यहां से वो स्वर्ग गए और फिर स्वर्ग से वैकुंठ गए। तो चार, ये महाभारत जहां रुकता है, भागवतम में उसके आगे का वर्णन है कि केवल पांचों पांडव ही नहीं, बहुत सुंदर वर्णन भागवतम में है कि जितने भी लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए वो सब भगवान के धाम गए। और इसका वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी। उद्धव कहते हैं विदुर जी को, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिराम पार्थस्त्रपूत पद्मपुरस्य। तो वो बताते हैं कि दरअसल जितने भी लोग वहां थे, तथे वचान्य नरलोक वीरा, तो वो सब अपना अपना देह छोड़ते समय उन्होंने भगवान को सामने देखा और उसी के कारण वो सब भगवान के धाम चले। तो वो लोग गए, फिर पांडव तो गए ही निश्चित। ठीक है, समृद्धि क्या प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु है और अमोघ के बारे में जो कथा है वो कुछ ही शब्दों में हमें बताइए।
चैतन्य महाप्रभु और अमोघ,
हाँ प्रभु जी।
जिसने भगवान के प्रति अपराध किया, द्वेष किया, उनकी निंदा की और फिर उसकी क्या अवस्था हुई, राइट? यही आप सुनना चाहते हैं? ओके, अभी क्योंकि ये वर्णन भगवत गीता का है, चैतन्य महाप्रभु का भी हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, सो किसी और समय में उस लीला को आपको सुना, ठीक है? ओके, नम्रता, आपका क्या प्रश्न है?
प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मैं मेरे माइंड में जो थॉट्स अगर बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं तो वो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो मतलब वो रियलिटी मुझे देखने को मिलती है। तो क्या ये थॉट्स आते हैं इसलिए वो रियलिटी में होती है या रियलिटी में होने वाली होती है इसलिए वो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं?
जनरली जो रियलिटी होने वाली होती है, और वो माइंड जब बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो उसमें ये पहले से आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में आता है वो रियलिटी होती है, एक्चुअली वो रियलिटी होने वाली होती है, उसका इंडिकेशन पहले से आपको मिल जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, या कहना जी थोड़े लोग हैं, बहुत तो नहीं है, जिनके अंदर ये माइंड की पावर हो जाती है जिससे वो इंडिकेशन उन्हें मिलता है। तो ये जो आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में थॉट आते हैं तो वो रियलिटी बनते हैं, रियलिटी है और वो पहले से आपके मन में इंडिकेशन के रूप में थॉट्स आ जाते हैं। शुभ जी,
हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा एक कॉन्फ्यूशन है। आप चैप्टर 7 में बताया था कि लॉर्ड कृष्ण ही सबसे सुप्रीम लॉर्ड है और विष्णु जी से उनका एक डिफरेंस भी दिया, लेकिन एक मटेरियल्स मिला था द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा जो ग्रुप में दिया गया था, तो उसमें ब्रह्मा जी बता रहे थे कि जो विष्णु जी है वो अवतारित होंगे और उनके साथ सभी डेमी गॉड्स अवतार होगा, तो इसमें कंफ्यूजन आ रहा है।
क्या कंफ्यूजन
वो ही
है कि
बड़े। हाँ
विष्णु श्रेष्ठ है या कृष्ण अवतार होते हैं या विष्णु अवतार होते हैं? ओके, सो इससे पहले यहाँ एक प्रश्न में चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है कि कितने श्लोक हैं अध्याय में। 28 श्लोक हैं। एंड आई थिंक आपको एक कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि शुरुआत में हमने जब विभाजन किया श्लोकों का, तो विभाजन करते हुए हमने केवल 23 श्लोकों का वर्णन, 22 श्लोकों का वर्णन किया और 23 से 28 आखिरी सेक्शन का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपको कंफ्यूजन शायद हुआ। लेकिन हमने बाद में उसको बताया कि 28 श्लोक। सो आपका प्रश्न था कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु अवतार लेंगे और फिर कृष्ण ले रहे हैं, कैसे इसको कैसे समझा। दरअसल ये जो जगत है इसमें तीन विष्णु हमने वर्णन किए थे, आपको स्मरण होगा, गर्गोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। तो ये जो विष्णु है ये जगत के इस ब्रह्मांड को वो चलाते हैं, इसीलिए जब कोई भी अवतार आते हैं तो वो विष्णु के माध्यम से आते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे हमने मान लीजिए कि किसी बहुत अमीर व्यक्ति की 200 फैक्ट्रियां हैं अलग अलग जगह पर, सब जगह जा नहीं पाता, तो उसने मैनेजर्स रखे हुए हैं वहां पर, लेकिन कभी कभी जाता है वहां पर, तो जाता है तो उसको इन्फॉर्म करके जाता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, वो व्यवस्था सारी करते हैं। तो इसी तरह ये जो जगत है ये दरअसल भगवान विष्णु के द्वारा नियंत्रित है, और विष्णु ये भगवान कृष्ण के विस्तार है, अगर हम भागवतम पढ़ेंगे उसमें बहुत स्पष्ट। लेकिन दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई एक निम्न है एक ऊंचा है, दोनों समान भी हैं। एक आचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो ऑफिस जाता है और वही व्यक्ति जब घर पर आता है, तो जब ऑफिस जाता है तो बड़े फॉर्मल कपड़े वगैरह पहने हुए, सूट वूट पहना है, लेकिन जब घर आ गया तो वो अपना आराम से कैजुअल क्लोथ्स में रहता है, और घर वाले उसको बुलाते भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है कोई, तो उसको ऑफिस में सब पीएम पीएम सर सर बुलाएंगे, लेकिन वो घर में आएगा तो उसके पत्नी उसके बच्चे उसको पीएम पीएम नहीं बुलाएंगे, तो उनके लिए अलग है। तो जब भगवान अपने मूल रूप में होते हैं तो कृष्ण हैं, वही जब ऑफिशियल काम के लिए आ जाते हैं तो विष्णु हो जाते हैं, ये उन्होंने एक बात समझाई। तो एक दृष्टि से दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन अगर शास्त्र भागवतम पढ़ें तो ये बताया गया है कि कृष्ण से विस्तार होते होते फिर विष्णु आते हैं, तो इसलिए विष्णु का कहना भी कोई गलत नहीं। अपर्णा कल्याणी मातु जी, वैसे आप लोगों को यहाँ क्विज का अटेंडेंस के लिए भेज दिया गया है, जो स्टूडेंट्स हैं उसको कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर मेडिटेशन के लिए कुछ लोगों ने पूछा था कि मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके द्वारा फिर आपको डिटेल आएगा। यस अपर्णा कल्याणी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में बता दीजिए।
हमने बताया क्लास के बीच शुरू में थोड़ा बहुत कि अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, अस्मि मतलब हूँ, तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ। तो अब इसको कैसे समझना है, क्योंकि साधारणता जो फैलाया गया है वो ये है कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान, जैसे वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म मतलब भगवान, तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान हूं, इस चीज को वो लोग कहते हैं, और कहते हैं कि अभी हम भूले हुए हैं, फिर आगे हम लोग याद कर लेंगे इत्यादि। तो ये चीजें यहाँ भगवान उसको संबोधित सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, निश्चित ब्रह्म वस्तु हूँ, लेकिन मैं परम ब्रह्म नहीं हूं। So, एक है ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म, एक है जीव, एक है भगवान। तो भगवान को पर ब्रह्म कहा जाता है, परम ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, और जीव को परमेश्वर नहीं कहा जाता। तो जब ये अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, इसका अर्थ है कि मैं कोई भौतिक वस्तु नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं इसके परे ब्रह्म वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, ये अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, थैंक यू। सनत, क्या प्रश्न है आपका?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन वाज दैट इफ वन हैज डन इंपल्स एक्टिविटीज एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ही रिमेंबर्स समथिंग एल्स, देन व्हाट वुड एक्चुअली हैपन?
समथिंग एल्स मींस व्हाट अदर देन कृष्ण?
हाँ,
ओके। So thank you. If somebody has done impious activities and at the time of death, if he's not able to remember Krishna and he remembers something else, maybe his simple activities or some other thing, so what will happen to him? Because he is remembering something else or some kind of sinful activities which he has performed or be attached to some other person. So he will be forced to take some kind of life which will be lower than human life. Because of the sinful reaction, because of the sinful actions what he has performed, and if he keeps remembering them or he remembers something else, so he will get the reaction, and then in his next life he will be given a lower birth than him, maybe an animal, maybe a bird, etc. So that is what happens. Alankrit Vrajeshwari Mataji.
कृष्ण प्रभु से आपने बताया कि ये राजा कुलभूषण एक आलमगीर थे, तो उसका क्या मतलब हुआ?
अलवार, अलवार कुलशेखर,
अलवार, अलवार, सॉरी.
सो अलवार ये दक्षिण भारत में 12 अलवार हुए. अलवार मतलब जो उस समय के धर्म को स्थापित करने के लिए जिन्होंने मदद किया. इनफैक्ट इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को लिखा जो तमिल भाषा के वेद माने जाते हैं, जिसको दिव्य प्रबंधन कहते हैं. तो ये इन सब से आए हैं, इन्होंने जो जो रचना की उसको जोड़कर सब एक बनाया गया है. तो जैसे कह सकते हैं कि महाजन है भागवतम में, तो ऐसे उस संप्रदाय के, ये विशेष करके श्री संप्रदाय में, तो ये 12 प्रमुख लोग माने जाते हैं जिन्होंने पूरे धर्म को या संप्रदाय को दिशा प्रदान की. तो इसीलिए वो 12 आलवार कहे गए हैं वैष्णव, श्री वैष्णव संप्रदाय में. तो जैसे हमारे प्रमुख आचार्य होते हैं, वैसे ही वहाँ के आचार्य. ठीक है, नेक्स्ट कौन है? पायल.
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम.
हरे कृष्ण.
आपने वो फ्लो चार्ट से बताया कि स्वर्गलोक से किस तरह से हम मतलब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और ऐसे शिला प्रभुपाद के दूसरे क्लासेस में भी सुना गया है कि एक बार अगर कोई वैकुंठ जाता है तो वहां से वापस नहीं आता है. तो और फिर काफी बार प्रभुपाद के कोर्ट में भी बताया गया है कि दिस आर वैकुंठ चिल्ड्रन. तो वैकुंठ के बच्चे मतलब वो वैकुंठ से आते हैं?
वैकुंठ जाकर वापस नहीं आते. और फ्लो चार्ट की आप बात कर रहे थे, तो फ्लो चार्ट में तो हमने हेवन का वर्णन किया है.
तो वैकुंठ चिल्ड्रन मतलब,
वैकुंठ चिल्ड्रन मतलब, बहुत अच्छा. जो प्रभुपाद ने वैकुंठ चिल्ड्रन की बात की कि वैकुंठ चिल्ड्रन क्या है, क्या वो वैकुंठ से आते हैं, वो हेवन से नहीं आते या कहीं और से नहीं. प्रभुपाद ने जो वैकुंठ चिल्ड्रन की बात की, उन्होंने बताया कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छी भक्ति कर ली और अब इस जन्म में बस थोड़ी सी करके वैकुंठ की ओर जा रहे हैं वे लोग. सो इसलिए उन्हें वैकुंठ चिल्ड्रन प्रभुपाद ने कहा कि वो अब वैकुंठ के पथ पर हैं. मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने काफी भक्ति कर ली और प्राय पूरी कर ली, और इसीलिए अब उन्हें अवसर मिला किसी वैष्णव के घर में जन्म लेने का. जैसे भगवद गीता का 6 अध्याय जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जिन लोगों की भक्ति पूरी नहीं हो पाती, तो वो लोग शुचि नाम श्री मतांगे हे योग भ्रष्ट भी जाए थे, अथवा या तो फिर वो लोग ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जो वैष्णव कुल है, जहाँ प्रभुपाद खुद का भी उदाहरण देते कि हमें या हमारे गुरु महाराज को अवसर मिला ऐसे घर में जन्म लेने का जो वैष्णव परिवार है. तो वैकुंठ चिल्ड्रन उनको कहा प्रभुपाद ने, जो वैष्णवों के घर में जन्म लेते हैं और उनका बस थोड़ा सा भक्ति बाकी है, बस उसको करके फिर वो भगवान के धाम वैकुंठ में प्रवेश करते हैं. ठीक है.
पर प्रभु जी, मृत्यु से पहले फिर वो मतलब इस जन्म में जब वो उनकी थोड़ी सी भक्ति बाकी थी और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं?
मृत्यु के बाद वो तुरंत जन्म लेते हैं वैष्णवों के घर, क्योंकि जब उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई, थोड़ा बहुत बाकी है, तो स्वाभाविक है कि उनको फिर और एक जन्म लेना होगा. तो वो जन्म तुरंत जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, अगला जन्म उनका. ये जो हमने आपको साइकिल बताई थी स्वर्ग वाली, वो हरेक के लिए नहीं है, वो उस व्यक्ति के लिए है जो स्वर्ग जाता है, तो फिर वो स्वर्ग से नीचे पूरे उसमें आता है. हर व्यक्ति को उसके उस मार्ग पर नहीं चलना होता। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग गति होती है मृत्यु के बाद। जैसे कुछ लोग मृत्यु के बाद तुरंत नरक की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग मृत्यु के बाद तुरंत जन्म लेते हैं दूसरा, कुछ लोग अन्य। तो कुछ लोग जो मुक्त होने वाले हैं, प्रभुपाद कहते हैं तुरंत वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग गति है व्यक्ति की, एक ही गति नहीं है। ठीक है, थैंक यू सनत आपका। एक सेकंड टाइम, ओके वी हैव टाइम। यस सनत, क्या प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे एक और सवाल था कि हायर प्लैनेट्स में अपॉर्चुनिटी है क्या, मतलब और हायर जाने के लिए? और
हायर प्लैनेट्स में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है और हायर जाने की, लेकिन साथ साथ वहां पर अट्रैक्शंस इतने हैं कि व्यक्ति को कठिन हो जाता है हायर जाना। जैसे वहां पर एंजॉयमेंट के जो फैसिलिटीज हैं वो अर्थ से बहुत हाई है, सिर्फ उसको हायर प्लैनेट कहा गया। सो अर्थ से बहुत हाई फैसिलिटीज हैं, तो इसलिए समटाइम्स वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू दोस फैसिलिटीज, और फिर जो हायर जाने का अवसर है उसको खो बैठता। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन इज टू स्टे ऑन द अर्थ एंड परफॉर्म भक्ति एंड गो टू द हायर प्लेसेस। दिनेश,
Why there are more than four sampradayas? Like why there are multiple sampradayas? Because all are praying to one God only. So why there is a need for many?
Well, as far as the scriptures are concerned, there are only four bona fide sampradayas: Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumar Sampradaya, and Brahma Sampradaya. These are the only four sampradayas mentioned in Padma Puran. So all others may be the offshoots, etc. But actually, there are only four bona fide sampradayas. So now question is, although they are worshipping the same Supreme Lord, then why there are four different sampradayas? Different sampradayas are to cater to the needs of different people. Like they have some difference, although they are preaching or they are worshipping the same Supreme Lord, but there is difference in the processes, because different people will get attracted to different processes. So the different processes are given that by any process you get attracted, but please come to the Supreme Lord. So although they have the same Supreme Lord, but they have given different processes, and they are all bona fide, they are all correct, authorized, because they are mentioned in the Shastras. So that is the reason of the four sampradayas. Okay, so thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय भी हो गया, 8:30 हो रहा है, और अब आपसे आने वाले शनिवार को भेंट होगी, जहां हम 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। और 9वां अध्याय ये राज विद्या कहा गया, राज विद्या, राजगुह्यम। तो इसको, इसमें भगवान ने बहुत अच्छी तरह, आप जो 8वें अध्याय में प्रारंभ किया उसको और 9वें अध्याय में भगवान आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। आप में से जिन्होंने अगर लिंक ना भरा हो वो लोग भर सकते हैं, और जो लोग सुबह मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, अभी वापस शेयर किया जाए। हरे कृष्ण।